इसलिए वो क्यों ऋण नहीं चुका सके। संसार में सबका ऋण चुकाया, उन्होंने गीता में लिखा ये जथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा हमारा भजन करता है उसको वैसा ही मैं दे देता हूं, जो कुछ मांगता वैसे जैसा भजन करता है उसको वजन करके दे देता हूं, कांटे पर इधर उधर नहीं। किंतु यह मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई ब्रज में गोपियों का ऋण बन गया। इसलिए उद्धव जी कहते हैं क्या, बंदे नंद बजी श्रीनंद पाद रेणु अभिक्ष, मैं गोपियों की चरण कृष्ण की चरण धूलि की वंदना नहीं की, गोपियों की चरण की धूलि की वंदना की। हे गोपियों, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है, तुम्हारे लिए ही ब्रज ये धन्य है। यदि ब्रज में गोपियां नहीं आती तो जगत धन्य नहीं होता। जगत किस लिए धन्य है कि उसमें ब्रज है वृंदावन, किंतु वृंदावन धन्य किस लिए, यहां पर की गोपियां हैं, इसलिए ये ब्रज धन्य है। गोपियों का जन्म लेना ही जगत में सार्थक है, इसलिए गोपियों की चरण की एक धूली में बन जाऊं, उसको दूसरे में प्रणाम करता हूं, धूली भी नहीं बन सकता। उद्धव जी जैसे लोग, नारद जी जैसे लोग, ऐसी गोपियों की महिमा, इसलिए इन गोपियों के समान आराध्य भगवान ब्रजेश तनय सत धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजुबध बर गए। गोपियों की आराधना से बढ़ करके कोई आराधना नहीं। इसलिए यदि कुछ इच्छा भी करनी है, धनजन की पुत्र की कामना मत करो, ये तो भगवान ने दिया अपने कर्मों के फल से। यही उसे यदि चाहो ये गोपियों जैसी हम कृष्ण की आराधना, राधा जी की आराधना कर सके, राधा जी की हम चेरी बन सकें, उनकी दासी बन सके, उनकी दासियों की दासी की दासी बन सके, ये इससे बढ़ सके जगत में और कोई चीज नहीं। यही चैतन्य महाप्रभु जी की भागवत गीता सब इसी के उपदेश को देते हैं। आज समय हो गया है, अभी हमको एक जगह जाना है बहुत जरूरी, इसलिए मैं आज यही वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोग थोड़ी थोड़ी संसारी किसी चीज के लिए, प्याज लहसुन के लिए भगवान को मत छोड़िए, शराब छोड़िए, घर में सुखी शांति से रहिए, पति और पत्नी में प्रेम हो, बच्चों से प्रेम हो। पति यदि कभी क्रोध करता है तो आप लोग सह लीजिए, और जब स्त्रियां यदि क्रोध करती हैं तो पति को सह लेना चाहिए। पतियों को ये नहीं चाहिए स्त्रियों को अपनी दासी और नौकरानी समझें, और स्त्रियों को भी वैसे ही सम्मान देना चाहिए पतियों को। घर में सुख और शांति हो, सभी मिल करके भगवान का, संसार का उद्देश्य होना चाहिए एकमात्र भगवत भजन। क्या व्यस्त हो रही है, क्या हो रही है, बस तो इस तरह से रह करके भगवान का आप लोग भजन करें। प्याज लहसुन जो खाते हैं आज से बंद करो, भगवान का हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही होते कल नाश्ते वनाश्ते वो करते। जब कलयुग में भगवान के नाम के समान और कोई चीज नहीं है, भगवान की दया दूसरे नंबर पर है, भगवान का नाम की दया सबसे उत्तम है। भगवान अभी नहीं आएंगे किंतु भगवान का नाम हम कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते, पलंग पर बैठ कर कभी भगवान का नाम करो, चलते फिरते रसोई बनाते हुए करो, कोई भी बात नहीं है, और समय नहीं मिलता है तो पेशाब और टट्टी करते हुए भी करो तो भी कोई बात नहीं है, इतने दयालु भगवान। इसे भगवान का नाम करो, किसी के जाल में मत पड़ो कहने से कि मैं निरंकारी ब्रह्म का उपासक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ या ऐसा हूँ। देवताओं का आदर करो किंतु भजन करो राजा कृष्ण का, बस सहज ही में तुम्हारे घर में सुख आएगा, कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाए। ये समस्त शिक्षाओं की शिक्षा है, आप लोग पालन करके जीवन में सुखी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो वो करना कि आप लोगों पर वर्षा करे, आपका जीवन सफल हो, इसी जन्म में भगवान को आप प्राप्त हो जाए। गौ प्रमाण
तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परम आदरणीय वैष्णवगण, वैष्णवीगण, उपस्थित सज्जन मंडली, मेरी माताएं बहनें और कन्याएं और मेरे पुत्र सब, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कोई दुख चाहता हो, सुख न चाहे। यहां तक कि पेड़ पौधे, कृमि कीट, मनुष्य, गंधर्व, देवता, जितने भी प्राणी हैं सुख के लिए कार्य करते हैं, दुख न हो। किंतु कैसी विडंबना है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं। जितने ही सुख के लिए प्रयास हो रहे हैं उसे दुख ही मिलता है। ऐसा कोई प्राणी है जो बूढ़ा न हो जाए? ऐसा कोई प्राणी है जिसके अंदर में कोई रोग नहीं हो? ऐसा कोई प्राणी है भगवान सत्य है कि नहीं है, ये हम तर्क और ये सब का विषय है, श्रद्धा का विषय है। किंतु यह प्रत्यक्ष सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसको जरूर मरना पड़ेगा। इसको नास्तिक आस्तिक कोई भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकता जो मरना है और दुख के साथ में मरना पड़ता है। यह परम सत्य है। इसलिए सभी सुख चाहने पर भी, सुख के लिए चेष्टा करने पर भी हम देखते हैं कि मृत्यु को पार नहीं कर पाते, बुढ़ापा अवस्था को पार नहीं कर पाते। इसी सुख के लिए हमने प्राचीन काल में सुना है हिरण्यकशिपु एक ऐसा वर मांगा, रात में न मरूं, दिन में न मरूं, किसी प्राणी से नहीं मरूं, किसी महीने में नहीं मरूं, किसी अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, पृथ्वी में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, घर के भीतर नहीं, बाहर नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, आकाश में नहीं मरूं। किंतु हुआ क्या? एक क्षण नहीं लगा, नहीं सुखी रह सका। रावण ने सोने की लंका बनाई, जवाहरात के उसके कपाट बने, 1,00,000 नाती, 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती। किंतु कोई भी दिया बाती देने के लिए नहीं रहा। भोग की इतनी लिप्सा, सुख की इतनी लिप्सा, और की स्त्रियों को तो मार पीट करके, छीन करके, उन्हें अपहरण करके, यहां तक कि सीता जी को अपहरण कर लिया, राम की शक्ति को। रहा सुखी? इसलिए आप लोग कैसे आशा कर सकते हैं कि क्षुद्र अर्थ के ऊपर में सुखी रह सकें? आजकल सुखी बनाने के लिए विज्ञान ने बहुत उन्नति की। रसोई घर से लेकर, पहले रसोई घर में चूल्हे जलते थे, लकड़ी से रसोई बनती थी, आजकल बहुत उन्नत, बटन दबा दो डाइनिंग रूम आ जाएगा, बटन दबा दो टट्टी बाथरूम आ जाएगी, टट्टी फिर स्विच दबाओ लोगों से मिलने का वो घर आ जाएगा, कंप्यूटर का युग देख रहे हो। किंतु दुख अपने स्थान पर है, मृत्यु अपने स्थान पर है। कोई है सुखी कंप्यूटर युग होने से भी? विज्ञान ने उतनी उन्नति की, मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति की, हार्ट खराब हो गया दूसरा हार्ट लगा दे, सिर गल गया मस्तिष्क दूसरे बंदर का मस्तिष्क भी लगा लेंगे, सब कुछ हुआ। किंतु सुख कहाँ? अपनी स्त्री से प्रीति नहीं, पति से प्रीति नहीं, बच्चों से प्रीति नहीं, आज कुत्तों से विदेशों में प्यार करते हैं, कुत्ते के नाम पर ट्रस्ट बनता है, करोड़ों डॉलर्स उसमें खर्च होते हैं, कुत्ते के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, क्योंकि पत्नी पर विश्वास नहीं, कब हमको छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। वो हवा और आंधी भारतवर्ष में भी प्रवेश कर चुकी है। आज ये बेटा नहीं कर सकता जो मैं किसका बेटा हूं। आप लोग सावधान रहेंगे इस विषय में। ये तो हुआ इस विषय में। आजकल ठगों का राज्य है, धर्म के नाम पर भी ठगी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं। भगवान का अवतार कहता है जो मैं भगवान हूं। आजकल बड़े बड़े लोग थोड़ा सा जादू सीख लेते हैं, आप जाएंगे अंधकार करके और किसी रुमाल में या किसी कोई एक सोने का हार आपके हाथ में फेंक देंगे। अरे बात, ये तो कमाल की बात है, उसके हाथ में नहीं था, ये भगवान है। ऐसे मूर्ख लोग आज हैं, बुद्धि से जिनका कोई भी संबंध नहीं है, भेड़ की तरह में उन अवतारों के पीछे पीछे चल रहे हैं। मनुष्य भगवान नहीं है, मनुष्य मनुष्य है। कृष्ण कभी भी बूढ़े नहीं हुए, राम कभी बूढ़े नहीं हुए, और इन अवतार जो आजकल बने हुए हैं, लोग प्रचार कर बड़े बड़े जज तक देखते हैं, मूर्ख लोग, बड़े बड़े मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक इन बने हुए माने भेड़ों के पीछे पीछे अवतारों के पीछे चलते हैं। न जाने अकल कहां है, मेरी समझ में नहीं आती। अवतारों के संबंध में तो गीता भागवत इत्यादि में लिखा गया है राम भगवान के अवतार हैं, कृष्ण भगवान हैं, समस्त अवतारों का वर्णन है। लोग आज गीता भागवत की तरफ में नहीं देखते हैं, इसलिए झूठे अवतारों के पीछे पीछे दौड़ते हैं सुख के लिए, जो खुद ही मर रहे हैं दुख से, त्राही त्राही करते हैं, जिनके दांत टूट गए हैं, केस पक गए हैं, जिनको दस में दिन दशाएं होती हैं, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। इन भगवानों से आप लोग सावधान रहें। आजकल तो जैसे प्लेग महामारी होती है ना, जहां प्लेग की बीमारी हुई और उसमें सभी मरने लगता है, फैल जाती है उधर उधर, आज अवतारवादों से ये प्लेग की तरफ में ये जगत भर रहा है। एक भगवान कृष्ण आए तो जगत में कितना कल्याण हुआ, राम आए और ये लाखों भगवान आज भगवान बन करके लोगों को ठग रहे हैं। न्याय जनी की कौन सी नरक में दुर्गति होगी, मैं नहीं समझता। इसलिए आप लोग बुद्धिमान हैं, इन भगवानों से, जो अपने को भगवान कहते हैं उनसे दूर रखेंगे, गीता और भागवत के वचनों को लेकर के देखेंगे, विचार करेंगे, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, इस विषय को ठीक रखेंगे। दूसरी बात, एक चीज और सावधान रहें। लोग कहेंगे कि तो हम ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इन लोगों को दूर से प्रणाम करके रखेंगे, खबरदार इनके पास में विश्वास न करेंगे, इनके पास में न जाएंगे, ये आप लोगों का धन हरण करेंगे, आपका सर्वस्व हरण करेंगे, इन लोगों से सदा दूर रहे। जीव ब्रह्म नहीं है तो जीव ब्रह्म मरता है, जीव को अज्ञान होता है, जीव को दुख होता है, भगवान को ब्रह्म को, इसलिए ये लोग भगवान नहीं है। ये ब्रह्मवादी भी कहते हैं कि मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे पैखाना हो जाएगा तो पैखाना मिल जाएगा तो उसको भी तो दुर्गंध तुमको नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मवाद या ब्रह्म में मिल जाना, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, शिवोहम, एक बहुत ही जंजाल है जगत का। इन चीजों से आप लोग सावधान रहें। मैंने संक्षेप में ऐसे ही कितने आजकल ये सब चल रहे हैं सब, जो लोग स्वयं भजन नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं करते, जो सच नहीं बोलते, आज बड़े बड़े आसनों पर बैठ करके और बड़े बड़े उपदेश देते हैं, उनका उपदेशों का वो पालन नहीं करते, और लोग अंधे होकर के उनके पीछे पीछे छूट रहे हैं। इन चीजों से आप लोग सावधान रहें। गीता भागवत रामायण पुराण ये सब सावधान करती है। तुलसीदास जी ने भी सावधान किया इन विषयों में। तुलसीदास जी ने एक सहज रूप में, छोटे रूप में बतलाया, बंध है सुत बरु का ही हिमारा, सुत सिद्धांत है उरुगारी, भजिए राम सब काज विचारी। वेद उपनिषद शास्त्र भागवत पुराण शास्त्र ये कहते हैं, बिना भगवान की सेवा के बिना भगवान की सेवा करने से प्रेममयी सेवा के हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। विशेष से कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। आपने बच्चों के साथ भी सुना, आप सुने होंगे, बिना कलि काल में भगवान के नाम का आश्रय लिए किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। और फिर भी इन लोगों के पीछे पीछे हम डोलते हैं, इसलिए कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह है उरुगारी भजिए राम सब काज विचारी। श्रुति वेद उपनिषद गीता शास्त्र भागवत रामायण पुराण यही एक स्वर से कहते हैं भजिए राम सब काज विचारी। सब कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। कहते हैं क्या, नौ प्रमाण देते हैं। बंध्या सुत बरु काही ही मारा, बांझ के पुत्र को किसी ने मार दिया आई, इसको हम विश्वास करेंगे। बांझ किसको कहते हैं, जिसको कोई संतान नहीं होती उसको कहते हैं बांझ। किंतु किसी ने कह दिया कि बांझ के लड़के को किसी ने मार दिया, हम ये विश्वास कर लेंगे, हो सकता है, असंभव भी मान लेते हैं। कछुए के पीठ पर केस उग जाए ये भी मान लेंगे, नहीं होता। अंधकार बरु रवि ही न सावे, अंधकार सूर्य को ढक दे ये नहीं होता, किंतु ये भी मान लेंगे। हिमते प्रगट अनल बरु होई, बर्फ से आग पैदा हो जाए, किसी ने कह दिया बर्फ से आग पैदा होगी उसमें हम कोई जल मरा, नहीं होता, तभी हम विश्वास कर लेंगे। नभ फूल ही बरु बहुबुद्धि फूला, आकाश में फूल खिल गए हैं, किसी ने कह दिया आकाश में कहाँ है पानी और कहाँ मिट्टी है जो वहां पर फूल खिलेंगे, नहीं फूल खिल सकता, किंतु इसको भी हम मान लेंगे युक्ति के लिए। बारी मथे बर हो ये घृत, पानी को मथने से घी निकल आया, ये भी हम मान लेंगे, नहीं होता। सिकता ते बरु तेल, मट्टी से जमुना की रेती को पीस करके उसमें से तेल निकाल लिया, ये भी हो सकता है, नहीं होता, तभी मान लिया। किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अभी बिना हरि भजन के, बिना भगवान का नाम किए, बिना भगवान का अर्चन बंदन पूजन किए हुए, बिना उनका स्मरण किए हुए, कलि काल में विशेष करके नाम का कीर्तन किए हुए, बिना खा करके नहीं खा करके, सोते समय में पलंग पर बैठ करके, छींक देते समय में, फिसलते हुए गिरते हुए, दिन में रात में कहीं भी चलते फिरते, हरि नाम करने से ही कल्याण। अभी देखा ना अजामिल का, इतना पापी, ऐसा कोई दुराचार नहीं इस जगत में नहीं किया, किंतु भगवान का ये अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और उससे उसका उद्धार हो गया। आप लोग इस चीजों में विश्वास रखेंगे, आजकल के इन भगवान जो प्लेग की तरफ में फैल रहे हैं, इन भगवानों पर विश्वास मत कीजिए, उनके पीछे मत दौड़िए, आप लोग भगवान का नाम करें। यदि सदगुरु मिले तो सदगुरु के आश्रय में रह करके, किंतु गुरुओं से भी सावधान रहें, जो दिन में 10 दफे गिर जाते हैं, जिनको रुपये का लोभ, स्त्री का लोभ, संसार का लोभ, ऐसे गुरु के पास में मत जाएं। गुरु अपने को कृष्ण का दास कहेगा यदि भगवान का नाम करता है। संसार से परम विरक्त हो, पैसे से कोई संबंध नहीं है, ऐसे जब सदगुरु यदि मिलते हैं उनका आश्रय लेकर के भगवान का आप लोग भजन कीजिए। इन मूर्खों के, अवतारवादों के, इन अद्वैतवादी मायावादियों के चक्कर में मत पड़े। हमारे सब सदग्रंथ जैसा कहते हैं वैसा लेकर के चले। भगवान को प्रेम का अतिरिक्त कोई भी वशीभूत नहीं कर सकता है। हमने कल इसकी कुछ कड़ियां बतलाई थी, आज एक छोटी सी कड़ी आप लोगों को कैसे भगवान के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा कैसे आप लोग भगवान का भजन करेंगे, इसके संबंध में छोटी सी एक भागवत की कथा आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूं। कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त कारणों के कारण है। सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले जितने भी भगवान ईश्वर हैं, उन ईश्वरों के भी परमेश्वर वो हैं, सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। राम, नृसिंह, कल्कि, बावन जितने भी भगवान के अवतार हैं, कृष्ण ही उन अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। वो कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही राम हुए हैं, कृष्ण ही बलराम, कृष्ण ही हैं नृसिंह इत्यादि हुए हैं, किंतु उनमें कुछ शक्ति और रस के तारतम्य से कुछ तारतम्य है। सभी एक नहीं है, किंतु होने पर भी तत्वतः एक है। जैसे एक चंद्र में 15 कलाएं 16 कलाएं होती हैं, उसी तरह से चंद्र एक ही रहने पर भी उसमें कलाएं अलग अलग दिखती हैं। ऐसे ही एक कृष्ण ही उसी में ही बहुत से अवतार दिखते हैं, किंतु है कृष्ण एक ही, सब अवतार एक ही तत्व है, भगवत तत्व है, किंतु कृष्ण सबके मूल हैं। कृष्ण सर्वैश्वर्य पूर्ण सर्वशक्तिमान होते हुए भी यशोदा के लाड़ प्यार के कारण उनके अंदर में भूख थी, ये कृष्ण भगवान हमारा पुत्र हो, हम उसको प्रेम से उसको पालें पोसें, हम उसको दूध पिलाएं, उसको पलने में झुलाएं, उसकी हम सेवा करें। इसलिए कृष्ण को भी भूख लग गई, उनके कोख में आए, गर्भ में आए, पैदा हुए। पुतना को कैसे मारा, उसका उद्धार कर दिया, तृणावर्त का और दूसरे दूसरे को किस प्रकार से उद्धार किया, उनको प्रेम की गति दे दी, किसी को मुक्ति दे दी। आज उसके संबंध में कुछ बतला रहा हूँ, कैसे यशोदा जी उनको स्नेह कर रही हैं, कैसे आप लोग करेंगे। यशोदा जी दधि मंथन कर रही, क्यों, ये परब्रह्म कृष्ण जो हैं, उनको ये यशोदा जी अपना लाला समझती हैं, भगवान कभी भी नहीं। अर्जुन कृष्ण को अपना सखा कहता था, कृष्ण उनके घोड़े को चलाते थे, रथ को चलाते थे, किंतु जो ही विश्व रूप दिखलाया, विराट रूप, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गया, बोले अब से सखा नहीं कहूंगा, हमारे अपराध हो गए, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, बस उनका सखा भाव दूर हो गया। कौशल्या जी, कौशल्या के राम हैं, जब पैदा हुए तब क्या हुआ, चतुर्भुज रूप में वो पैदा हुए। कौशल्या जी उनका दर्शन करके, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ी हुई और वंदना करने लगी, स्तुति करने लगी, ये आप जगत के नियंता हैं, पालक हैं, भगवान हैं स्वयं। फिर जब उन्होंने माया से उनको, उनके इस भाव को ढक लिया, तब फिर वो गोदी में लेकर के दूध पान खिलाने लगे। किंतु यशोदा का विश्व रूप दिखलाने पर भी यशोदा जी ने समझा, जी इसको किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, उनको भगवान नहीं माना, अपना लाला माना, गैया, काली गैया के गोबर और उसका मूत्र मिला करके तर तर करके उनको स्नान कर दिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको विदा किया, कभी उनको भगवान नहीं माना। ये है बात्सल्य भाव, दधि मंथन कर रहे हैं कि हमारा लड़का नटखट हो गया है, दूसरों को घरों में मक्खन चुराता है, हमारे घर में शायद मक्खन खट्टा होता है, इसलिए कृष्ण को नटखट से बचाने के लिए, इसका जीवन खराब न हो जाए, चोर न हो जाए, झूठ और झूठ भी कभी कभी बोलता है, उसको सुधारने के लिए आज अपनी अच्छी गायों का दूध अपने आप कढ़ा और उसको जमाया और दासियों को अपने अपने घर में दिवाली मनाने के लिए भेज दिया और खुद दधि मंथन कर रही, एक खंभे के अंदर में रस्सी डालकर और उसके अंदर में मथनी को लगाया और उसको हाथ से ऐसे कर रही है। कितना दूध है, थोड़ा दूध नहीं, 2-4 किलो नहीं, मनो मनो दूध, और उसको यशोदा जी बांट रहे, बड़ी सुंदर हैं। जिसका पुत्र कृष्ण इतना सुंदर हो तो मैया कितनी सुंदरी होगी, बड़ी सुंदर, बस्तक छल विशाल, कमर बड़ी पतली, यदि झुक जाए तो मानो टूट जाए, रेशमी वस्त्र पहनी है, बड़ी सूक्ष्म भीते से उनका सौंदर्य झांक रहा है और तन्मय होकर के अपने लाला के बचपन की लीलाओं को, बाल्य लीलाओं का गायन करती हुई और दति मंथन में एकदम मत हो रही है। क्या कह रही है? गोविंद दामो धर्म धवेती, गोविंद दामो गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। आंखों से आंसू झर रहे हैं अपने बेटे की लाला के चिंतन करते करते, स्तन से दूध निकल रहा, हाथों में सोने की चूड़ियां, ये मानो करताल की, मधुर करताल का ये काम दे रही है। और दधी जो मथ रही, उसे जो साउंड निकल रहा है, शब्द निकल रहा है, धिक्तान धिक्तान, माने क्या? उनको धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, जो भगवान बनते हैं, आम ब्रह्मास्मी कहते हैं, जादू के बल पर भगवान बन रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। इसलिए तन्मय होकर के गा रही, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। सवेरे 4 बजे का समय है, कृष्ण पलंग पर सोए हैं, उठे मैया कहाँ गई, काजल भरा पड़ा है, ऊ करके रोने लगे, मैया को देख नहीं रहे। देखा जी बहुत दूर से दधी मंथन कर रही है और मुझे दूध पिलाया नहीं, नंगे अभी छोटे से अभी बच्चे 2-2.5 वर्ष के हैं, कमर में सोने की करदनी पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से उठे, ऊ आ करते खाट से उतर नहीं पा रहे, विश्व ब्रह्मांड को अपनी कानी उंगली पर धारण कर सकते हैं, विश्व को लेकर के लाखों लोग विश्व की सृष्टि कर सकते हैं और आज ये पलंग से उतर नहीं रहे हैं, ये परब्रह्म की लीला है, बाल्य लीला, जिनका स्मरण करने से भाव रोग दूर हो जाता है, आम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं होगा, अवतारों की सेवा करने से नहीं होगा, शिवोहम कहने से नहीं होगा, दान पुण्य करने से भी नहीं होगा, ये शुद्ध भक्तों के आश्रय में भगवान के लीला चिंतन के द्वारा होगा, भगवान के कीर्तन के द्वारा हो सकता है ये संभव, नाम के द्वारा ये संभव हो सकता है। कृष्ण वहां से उठे और ऊ करते हुए अपनी आंखों को ऐसे मलते हुए और रोने लगे जोर से, किंतु मैया तन्मय है, उनका रोना यशोदा मैया जी नहीं सुन सकी, वो तो तन्मय होकर के गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। अरे घर में झाड़ू दे रही है, मुख तो आपके पास है ना, झाड़ू तो हाथ दे रहा है, क्यों नहीं मुख से हम कर सकती झाड़ू देते समय, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। अरे बच्चे को पलने में झुलाओ, उसे स्वयं शयन करा रही है, सो सो मत कहो, ऐसे ऐसे कर थपथपी दो, किंतु थपथपी देते हुए कहो गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो। घर में कोई काम कर रही है, झाड़ू बहारू दे रही है, मुख में क्या रखा है, क्यों नहीं कर सकते हैं, गोविंद दामो। वैसी तरह से कोई भी काम कर रही हो, कोई भी काम कर रही हो, रसोई बना रही हो, मुख कहाँ है, रसोई बना रहा है मुख, मुख से क्यों नहीं कर सकती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, क्यों नहीं कर सकते। कीर्तन का आप अपने घर का काम कीजिए, ऑफिस जा रहे हैं, बेकार बेकार की चिंताएं क्यों कर रहे, कोई काम में बैठे हैं क्यों बैठे हैं बेकार का, उसमें मैं भगवान का नहीं कर सकते। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल। तो यशोदा मैया तन्मय है और कृष्ण वहां से चले हैं। कृष्ण का एक स्वभाव है क्या, यहाँ पर कीर्तन होगा जरूर पहुंचेंगे, तो यशोदा मैया कीर्तन कर रही हैं तो वहां पर सोए कैसे रह सकते हैं, यह कभी संभव है जो सोए रहे, एकदम खींच आए। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मस्त भक्त जत्र गायन्ति, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं द्वारका में नहीं रहता, महिषियों के पास में। गोपियों ने गायन करना आरंभ कर दिया, कृष्ण राष्ट्र अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बिलाप कर रही थी, सोचा जैसे बिलाप करने से नहीं मिली है तो क्या किया, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा स्वस्वदत्र हि दैतदीशतां तव कथामृतम् जीवनम कपीड़ितम कल्म शाप श्रवण मंगलम आततम भुवि गृणंति ते भूरि दाय।
जहाँ गोपियों ने गायन आरंभ किया, आंखों में आंसू, हृदय द्रवित हो गया, कृष्ण का चित्त द्रवित हो गया, बस वहीं पर ताशामार भी सौरी स्मयमान, उनकी सभा में एकदम मुस्कुराते हुए, लज्जित होते हुए, गले में कपड़े लगा करके मानो क्षमा मांगने के उनके सामने में प्रकट हो गए। तो यशोदा जी यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं तो वो सोए कैसे रह सकते हैं, बस झट चले, निकट आते जा रहे हैं, जितने निकट आ रहे हैं उतनी रोते जाते हैं, और गंगा जमुना की धारा एक तो काले है ही है और काला कज्जल आंखों से निकल करके गंगा जमुना की धारा बहता हुआ सारा शरीर भी काला हो रहा है। धीरे 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 जितने निकट आते हैं उतने जोर से चिल्ला रहे हैं। देखो एक बात है, और अवतारों में भक्त लोग भगवान को पुकारते हैं, है ना, और उसके लिए चिंता करते हैं, और हमारे कृष्ण की में कैसी बात है, भगवान होते हुए भी मैया के लिए रो रहे हैं, मैया के पास में जा रहे हैं, मैया नहीं आ रही भक्तों के पास, ये कृष्ण की विशेषता है। गोपियों ने नहीं बुलाया, कृष्ण को जरूरत हुई राष्ट्र के लिए तो क्या हुआ, कृष्ण खुद बंसी बजा करके उनको बुलाया, इसलिए कृष्ण को यहाँ पर भक्तों की सेवा करने के लिए, ये दिखलाने के लिए हमसे भी बड़े राधिका जी हैं, हमारे भक्तों इस चीज को उनको दिखलाना था, इसलिए यशोदा मैया के पास में रोते हुए आए। निकट आ गए तो भी तन्मय हो रही हैं, कृष्ण निकट आ गया रो रहा भी तभी नहीं सुन रही, गोविंद दामो धर्म धरेती, जब निकट में एकदम आ गए तो कृष्ण से रहा नहीं गया, एक हाथ से उन्होंने गति मंथन का दंड पकड़ लिया और दूसरे से उनके केस को पकड़ लिया, मैया मैं इतना रो रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम हमारे तरफ में देखती नहीं, मैंने भक्त नहीं देख रहा है भगवान को, देखो यदि भजन करेंगे आप लोग तो ऐसे ही होगा, कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे कहेंगे कि मुझे भूख लगी है मुझे खिलाओ, मुझे इसलिए यशोदा जी के पास में आ रहे हैं, उनको प्रेम की भूख होती है,
इस चीज की भूख नहीं होती है। तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम उमड़े जब कृष्ण तुम्हारे पास में भीख मांगने के लिए आए यशोदा जी के, जब देखा अरे ये कौन, सती मंथन कैसे बंद हो गया, उन्होंने देखा अरे ये तो लाला नंगा सा श्यामला सा सलोना, कितना सुंदर मनोहारी, और रो रहा है। कृष्ण को जल्दी से पकड़ कर अपनी गोदी में बैठा लिया, स्तन दे करके कपड़े से ढक दिया, दूध बनाना मंथन करना बंद कर दिया। कृष्ण दूध ललक करके पी रहे हैं, और इतने में हुआ क्या, पासी में दूध रखा था आग पर, वो गर्म करने के लिए दधी जमाएंगी तो उफन करके वो आग में गिरने लगा। यशोदा जी देखिए हमारे देखते देखते ये दूध गिर जाएगा, ये दूध नहीं कोई भक्त है। भक्त ये सोचता है यदि हमने भगवान की सेवा नहीं की तो ये जन्म बेकार है, यदि भगवान का नाम नहीं हुआ भगवान की सेवा नहीं हुई तो ये जीवन किस काम का, मर जाना ही अच्छा है, इसलिए ये दूध उछल करके उसमें गिर रहा। यशोदा जी ने कहा अब मैं अपना भी दूध पिलाना बंद कर देता हूँ देती हूँ और तुमको इसकी सेवा में लगाऊंगी, तुम इतना मचलो मत, आग में मत गिरो, उसको रक्षा करने के लिए उधर में जाती हूँ, जा करके उसको पानी का छीटा दे करके सांत्वना दिया, हाँ अभी अभी तुमको लगाएंगे। देखो यशोदा मैया के स्तन में कितना दूध है, जिन्हें ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक को अपने पेट में रखा है ना, तो उसमें दूध कितना होगा, कोटि कोटि खीर समुद्र विश्व ब्रह्मांड उससे पल जाएगा, इतना बड़ा दूध। और कृष्ण की भूख कितनी है और पेट कृष्ण का कितना बड़ा है, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड अपने पेट में रखते हैं, उनको कोई दूध पिला करके पेट भर सकता है नहीं, इसलिए कृष्ण का उदर इतना, यशोदा जी के स्तन में इतना दूध, दोनों में लग गई होड़, इसलिए दूध को दूसरे दूध पीने को कृष्ण को समय नहीं, इसलिए वह दूध उछल करके गिर रहा है। यशोदा मैया का दूध भी खत्म नहीं होगा, कृष्ण की भूख भी खत्म नहीं होगी। तात्पर्य क्या, ब्रज में कृष्ण अपने आनंद में मग्न है और कोई भक्त यहाँ से उनकी आराधना कर रहा है, उनको समय है जो वो छोड़ करके यहाँ हमारे दुख कष्ट को देख करके आएंगे, उनको समय नहीं, किंतु हाँ कृष्ण बड़े दयालु हैं, योग माया ऐसा करा देती है, इसलिए दूध का कष्ट देख करके यशोदा मैया उसको उतारने के लिए जाती हैं, और उस उतार करके जब आती हैं देखा क्या ये नटखट तो है नहीं और घड़े के पेंदी में कोई छेद हो गया, उसे दूध निकल गया है, और कृष्ण उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, दूध निकल करके गिर रहा है, देख रहा है वाह दूध तो सारा निकल अच्छा है, किंतु साथ ही साथ में डर पैदा हुआ अभी यशोदा मैया आएगी अभी मारेगी हमें, जिनके नाम लेने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है, जामिल इत्यादि का तो आप उदाहरण देखते ही हैं, और वो आज मैया के भय से भयभीत होकर के सोचा आज मैया मारेगी, कहते हैं ना सिखवती राधा नाचन, कृष्ण को राधा जी मान की छड़ी लेकर, मान गुमान की छड़ी लेकर, मान गुमान लकुट लय ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी, उनको नाचना सिखा रही है और वो डरते हैं श्याम उनसे, प्रेम से डरते हैं, आकर के जब देखा अरे कहाँ गया, देखा उसके पैरों के छापे, देखा जो घर में घुस करके एक उदुखल के ऊपर में और मक्खन ले रहा है, बंदरों को खिला रहा है और कागों को कबों को खिला रहा है, अच्छा ये बड़ा भारी नटखट है, इसको शासन करना चाहिए, और जहीं उसके पीछे गई लठिया लेकर के एक बेंत और तहीं वो कूद करके वो भागा, काल जवन जिसको नहीं पकड़ सका, जरासंध नहीं पकड़ सका, शुद्ध मन से जिन योगियों का मन शांत हो जाता है वो कृष्ण के ध्यान में भी उनके चरणों को नहीं ला पाते हैं, और यशोदा जो गोपी उनको पकड़ने के लिए जा रही है, ये देखो तो धृष्टता उस गोपी की, और उसने कृष्ण से भी अधिक तेजी से दौड़ करके उस परब्रह्म को पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ना सहज नहीं, कृष्ण से कोई तो वेगवान तो हो नहीं सकता, दौड़ रहे हैं, ये कृष्ण लीला नहीं कर रहे। सचमुच में यशोदा जी ने कृष्ण की अपेक्षा वेग रूप से दौड़ करके पकड़ लिया। कैसे? कृष्ण का मैया पर जो प्रेम है उसकी अपेक्षा यशोदा मैया का कृष्ण पर प्रेम है, ये है तेज दौड़ना। आ रहा है समझ में? कृष्ण का भक्तों पर कृपा एक है और भक्तों का कृष्ण के ऊपर में प्रेम है। कृष्ण का यशोदा मैया के प्रति जितनी कृपा है या प्रेम है उसकी अपेक्षा करोड़ गुण यशोदा जी का प्रेम है कृष्ण के प्रति। इसलिए अपने प्रेम से कृष्ण को वशीभूत करके उसे आगे पकड़ लेती हैं। आप भी कृष्ण को पकड़ सकती हैं यदि आप में वैसा प्रेम हो। कौन सा प्रेम? यशोदा जैसा प्रेम, विशेष करके गोपियों जैसा प्रेम हो तो गोपियों के जैसे वशीभूत हो जाते हैं, वो प्रेम से वशीभूत हो। और कोई दूसरा कलिकाल में या किसी भी युग में नहीं है भगवान को है? और इसके अतिरिक्त कभी भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया पीछे से, अरे मारू, बस ऐसे करने के साथ में कृष्ण रुक गए और उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण रो रहे हैं, मारू तुझे दुष्ट बंदर बंधु, चंचल, झूठ, चोर, इस प्रकार से शासन करने लगी। कृष्ण रो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उनको पकड़कर फिर सामने मारू। ऐसा ब्रह्म को कोई राम को कौशल्या दशरथ ने कर सके? देवी वसुदेव जी अपने पुत्र को कर सके? नृसिंह भगवान को उस खंभे ने कर सका? कोई नहीं कर सकता। यह है प्रेम। पर ब्रह्म डर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में कहा, अच्छा तुझे मारूंगी नहीं, तुम्हें बांध करके रख दूंगी। एक अपने केश बांधने की रेशम की डोरी निकाली और उनके कमर में बांधने की, कमर कितनी है 12 अंगुल बस, सोने की जंजीर पड़ी हुई है और उसे बांधने की चेष्टा की। वो करी करी 2 गज रेशम की डोरी और उसे बांधने की चेष्टा की, एक बार भी नहीं बंधा। 2 बार 4 बार लपेटा ऐसा नहीं। दूसरी रस्सी मंगाई, अपने घर की सारी रस्सियां मंगाई। उनके घर में कितनी रस्सी है? 9 लाख गायों को बांधने की रस्सी है। रस्सी लंबी होती गई, कृष्ण की कमर उतनी, एक बार भी नहीं आई बंधन में। दूसरों के घर से रस्सी मंगवाना, सखियों सहेलियों जरा लाओ तो रस्सी। वो हंस रही हैं, ताली बजा रही हैं, अरे तेरे लाला के ललाट में ब्रह्मा जी ने बंधन नहीं लिखा, तू कैसे बांधेगी? सवेरे से शाम तक 10 जन्म तक बांधेगी? नहीं बांध सकती। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसको कोई बांध सकता है? कोई रस्सी ऐसी नहीं जो बांध सकती है। इसलिए तू शांत हो जाए। किंतु यशोदा जी ने प्रण किया, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, जन्म भर तक बांधती रहू जाए, बांधे बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तात्पर्य क्या? तात्पर्य कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्होंने सोचा मेरी मैया मुझे बांध देगी तो गैया डकर रही हैं, अपने बछड़ों को भी दूध नहीं देती। मैं यदि नहीं जाऊंगा तो ये गाय दूध नहीं देगी। हमारे सखा हमारे लिए खेलने के लिए तैयार हैं। सिदाम सिदाम सुदाम वसुदाम तो कृष्ण अर्जुन लवंग इत्यादि तो ये खेलने के लिए खड़े हैं, मैं इनके साथ में खेल नहीं सकूंगा। और भी बहुत सी बातें हैं, बछड़े इनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए यशोदा मैया मुझे न बांधते तो अच्छा है। इसलिए जोग माने आकर के ऐसा किया जो वो बांध ही नहीं पा रही हैं। जब यशोदा जी की मुखमंडल लाल हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने समझा ये शालग्राम ही हमारे भगवान हैं, नारायण हैं। प्रार्थना कीजिए, हमारा बेटा हमारे गर्भ से निकलकर और उसे मैं बांध नहीं सकती, मैं लज्जा से मुख कैसे दिखाऊंगी? प्रार्थना करने लगी, पसीने से तरबर हो गई, मुख कभी लाल हो गया, सखियां हंस रही हैं। कृष्ण ने देखा जी मैया को परिश्रम हो रहा है, अब बिना बांधे वो खाएगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, इसलिए कृपया आप स्वबंधने। साथ ही साथ में उनकी जोग माया वहां से हट गई, वात्सल्य उनका वहां पर कृपा शक्ति उदित हो गई और परिश्रम कुछ नहीं हुआ, केवल एक रस्सी से ही अपने जो केश बांध देने के, उस कृष्ण के कमर को बांधा और फिर उखल को भी बांध दिया, दोनों को, कृष्ण को भी दंड दिया और इसने भी सहायता की थी चोरी करने में, इसलिए उसको भी बांधा दोनों को। इस प्रकार से ये लीला की उन्होंने, क्या लीला की, यदि भक्त कोई भी साधन नहीं करता भगवान नहीं मिल सकते, भगवान की कृपा नहीं मिलती, और जब तक कि भगवान की कृपा नहीं है लाख साधन करते करते तब थक जाओ कभी नहीं मिलेंगे, और वो भी भक्तों की कृपा होनी चाहिए तब वो होगा, ऐसे नहीं। इसलिए अपना हम साधन करेंगे किंतु शास्त्री साथ में भगवान और भक्तों की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे तभी ये कभी संभव हो सकता है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दश सक्षम आत्मनि, भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करो इस कल युग में, उनके लीलाओं का स्मरण कराओ, अपने घर में जहां भी रहो स्थाने स्थिता, घर में है त्यागी है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, पत्नी है, स्त्री है, माता है, वृद्ध है, कोई भी है, अपने स्थान में रह करके भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, अथवा जहां पर भगवान की लीला कथाएं हो रही हैं, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, अच्छे अच्छे उच्च कोटि के वैष्णव संत लोग हैं, वो लोग हरि कथा कर रहे हों, दूसरों को ठगने की लालसा उनमें नहीं है, तो वहां पर जाकर के हरि कथा सुने, भगवान की लीला कथाएं सुने।